नमस्कार भारत, 19 फरवरी दिन सोमवार, मैं हूं आदर्श राठौर। अमेरिका में बंदूकों पर सख्त कानून बनाने की बहस को निर्णायक मोड़ पर ले जाने के लिए फ्लोरिडा स्कूल फायरिंग में बचे छात्रों ने कसी कमर, वॉशिंगटन में करेंगे प्रदर्शन।
President Trump, you control the House of Representatives, you control the Senate, and you control the executive. You haven't taken a single bill for mental health care or...
8 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के संदिग्ध पुलिस अधिकारी के समर्थन में तिरंगा लेकर रैली निकालने पर जम्मू कश्मीर में गरमाई राजनीति।
ये बच्ची का जो रेप और मर्डर हुआ, ये हिंदू और मुसलमान का मसला बन गया हुआ है। वो उनको लग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को कि जो उनकी सपोर्ट करेगा हिंदुओं की, उसको वोट मिलेगा फ्यूचर में, जो मुसलमानों की सपोर्ट कर गया उनको वोट नहीं मिलेगा।
होगी पाकिस्तान से वसतुल्लाह खान की डायरी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। अमेरिका में फ्लोरिडा के एक स्कूल में हुई गोलीबारी के बाद छात्रों ने बंदूक नियंत्रण पर राजनीतिक कार्रवाई के लिए अगले महीने वॉशिंगटन में एक राष्ट्रीय रैली की योजना बनाई है। व्हाइट हाउस के कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप बुधवार को हाईस्कूल छात्रों के एक समूह से बातचीत करेंगे। ईरान के पर्वतीय क्षेत्र में 66 लोगों के साथ गायब हुए विमान के बचाव अभियान में भारी बर्फबारी के बाद रुकावट आई है। सरकारी टीवी चैनल का कहना है कि अगर स्थिति ठीक हुई तो सोमवार को फिर से अभियान शुरू होगा। ये विमान राजधानी तेहरान से दक्षिण पश्चिमी शहर यासूज जा रहा था। जागरूस पर्वत को पार करने के दौरान ये रडार से गायब हो गया। ऐसी आशंका है कि विमान में कोई भी व्यक्ति अब जीवित नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी और सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने क्रू और यात्रियों के परिजनों के प्रति सहानुभूति जताई है। वहीं कुछ लोगों को अभी भी अपने परिजनों का इंतजार है। मैं सुबह से फोन करती रही लेकिन कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैंने अपने भाई को बुलाया और उन्होंने कहा कि वो यहाँ आएंगे। अभी भी विमान का पता नहीं। उन्होंने बाद में कहा कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये थे एक यात्री के परिजन के शब्द। इस्लामिक स्टेट समूह ने कहा है कि रूसी गणराज्य दागिस्तान में एक चर्च में 5 लोगों की हत्या के पीछे उसका हाथ है। किजलिया शहर में एक धार्मिक समारोह से लोग लौट रहे थे तो हमलावर ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हमलावर को मार गिराया। रूसी मीडिया ने हमलावर की पहचान दागिस्तान के एक युवक के रूप में की है। इस हमले में 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। 2015 में कॉकासस में आईएस ने एक शाखा की स्थापना की थी, जिसने तब से कुछ छोटे हमले किए हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चरमपंथी समूहों के खिलाफ इसराइली हमले में मारे गए 2 फलस्तीनी किशोरों को आज दफना दिया गया। शनिवार को एक धमाके में इसराइली जवानों के घायल होने के बाद यह कार्रवाई की गई थी। हमास के प्रवक्ता फाउजी बारहूम ने कहा, ये जारी रहना चाहिए और वे हमें निशाना बनाएंगे। ये प्रतिरोध का कर्तव्य है कि इसराइली आक्रामकता का बदला लिया जाए और फलस्तीनी लोगों की सुरक्षा की जाए। प्रतिरोध कभी भी गजा पट्टी पर लड़ने के तरीके के बारे में नए तथ्य बनाए जाने को लेकर अनुमति नहीं देगा। ये थे हमास के प्रवक्ता फाउजी बारहूम के शब्द। उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों ने कहा है कि उन्होंने सीरियाई सरकार से एक सौदा किया है, जिसके तहत वो तुर्की आक्रमण को पीछे धकेलने के लिए सेना भेजेगी। एक वरिष्ठ कुर्द अधिकारी ने कहा कि कुछ दिनों में एफरिन प्रांत में सरकारी सेना दाखिल हो जाएगी और वो कुछ सीमाओं पर तैनात होगी। हालांकि सरकार ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। तुर्की अपनी सीमा से लगे एफरिन में कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी मानता है और पिछले महीने से वह उनके खिलाफ आक्रामक हुआ है। कुर्दों ने एफरिन में स्वायत्तता स्थापित की है, लेकिन वहां सरकारी सेना की मौजूदगी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के पुलिस मंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार मामले से जुड़े 5 लोगों की खोज का दायरा भारत, चीन और दुबई तक बढ़ा दिया गया है। फिकिले मबलूला ने सरकारी प्रसारणकर्ता से कहा कि पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के करीबी गुप्ता परिवार के एक सदस्य समेत 5 लोगों को वापस लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका इंटरपोल के साथ काम करेगा। पिछले हफ्ते जुमा के राष्ट्रपति पद से इस्तीफे से पहले करोड़ों डॉलर के डेयरी फार्म परियोजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रण लिया है। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन यानी बाफ्टा पुरस्कारों की लंदन में एक समारोह में घोषणा हुई है। बेस्ट फिल्म समेत 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग ने 5 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। अमेरिका में गन कंट्रोल को लेकर होने वाली बहस कोई नई बात नहीं है। गोलीबारी की घटनाओं के बाद बंदूकों पर नियंत्रण को लेकर सख्त कानून बनाने को लेकर चर्चा होती रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद मामला शांत हो जाता है। लेकिन बुधवार को फ्लोरिडा के एक स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना में बचे छात्रों ने बंदूक रखने के लिए सख्त कानून बनाने की बहस को निर्णायक मोड़ देने के लिए कमर कस ली है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए मोहम्मद शाहिद से।
फ्लोरिडा के एक स्कूल में गोलीबारी की घटना के बाद अमेरिका में गन कंट्रोल कानून को लेकर बहस फिर से शुरू हो चुकी है। गोलीबारी की घटना को देखने वाले छात्रों ने गन कंट्रोल पर राजनीतिक कार्रवाई के लिए राजधानी वॉशिंगटन में राष्ट्रीय मार्च निकालने की घोषणा की है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में कहा है कि गन कंट्रोल कानून न पास करने के लिए डेमोक्रेट्स जिम्मेदार हैं। छात्रों का ट्रंप को लेकर काफी गुस्सा है, क्योंकि वो बंदूक रखने को नागरिक अधिकार मानते हैं। गोलीबारी में बचे एक छात्र डेविड हॉग ने एक टीवी इंटरव्यू में सीधा राष्ट्रपति से कहा,
President Trump, you control the House of Representatives, you control the Senate, and you control the Executive. You haven't taken a single bill.
राष्ट्रपति ट्रंप, प्रतिनिधि सभा आपके नियंत्रण में है। आप सीनेट को नियंत्रित करते हो और आपका शासन पर नियंत्रण है। आप मानसिक स्वास्थ्य देखभाल या बंदूकों पर नियंत्रण पर एक भी बिल ना लाते हैं और ना पास करते हैं। ये दयनीय है। हमने सरकार का कामकाज ठप होते देखा है, हमने कर सुधार देखा है, लेकिन हमारे बच्चों के जीवन को बचाते नहीं देखा। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आप सोचते हैं कि ये अतीत के बारे में सोचने का समय है और भविष्य में हजारों बच्चों को मौत से बचाने का नहीं? मुझे आपसे चिढ़ है। ये थे एक छात्र डेविड हॉक के शब्द। ऐसा कोई पहली दफा नहीं है कि बंदूकों को रखने के लिए किसी कानून पर बहस हो रही है। फ्लोरिडा की घटना के बाद छात्रों ने कल भी प्रदर्शन किया था और अमरीकी सांसदों और राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लगाए थे। छात्रों के मारे जाने के गम को डेविड हॉक कुछ यूं बयां करते हैं।
So many people lost loved ones. Our community and our nation have taken too many bullets to the heart and now is the time for us to stand up. So
बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। हमारे समुदाय और हमारे राष्ट्र ने अपने दिल पर कई गोलियां खाई हैं और अब खड़े होने का समय है। इसलिए मैं वापस स्कूल जाने को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं करता हूं जब तक कि उचित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और बंदूक नियंत्रण कानून पास नहीं हो जाता, क्योंकि इस समय यह अस्वीकार्य है। ये थे छात्र डेविड हॉक के शब्द। बुधवार को फ्लोरिडा के एक स्कूल में गोलीबारी की घटना में 17 छात्रों की जान गई थी। स्कूल के ही एक पूर्व छात्र निकोलस क्रूज को इस हमले के अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार किया गया है। छात्रों की योजना 24 मार्च को राजधानी वॉशिंगटन में मार्च निकालने की है, जिसके बाद गन कंट्रोल कानून को लेकर छिड़ी बहस आगे जा सकती है।
मोहम्मद शाहिद बता रहे थे कि अमरीका में जो फ्लोरिडा में फायरिंग हुई है, उसमें जो छात्र बचे हुए हैं, किस तरह से बंदूक रखने को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर वॉशिंगटन में मार्च करने जा रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में कल विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हुआ। त्रिपुरा के दक्षिणी हिस्से में बांग्लादेश की सीमा के पास भारतीय इलाका है मुहरी चार, यानी मुहरी नदी की तराई वाला इलाका। यहां से कई हजार लोग हर साल की तरह इस बार भी मतदान करने के लिए भारत के मुख्य भूभाग में पहुंचे। इस जगह पर भारत और बांग्लादेश दोनों अपना दावा जताते हैं, लेकिन यहां रहने वाले लोगों के लिए ये विवाद परेशानी का सबब बन गया है। इस इलाके में क्या समस्या है? बीबीसी संवाददाता शुभज्योति घोष की रिपोर्ट को संक्षेप में सुना रही हैं मानसी दाश।
दक्षिण त्रिपुरा के सदर बिलोनिया जिले को घेरकर बहने वाली मुहरी नदी के ऊपर बने बांध के बीचों बीच मौजूद है भारतीय सीमा सुरक्षा बल की सतर्क चौकी। सामने दूर दूर जहां तक नजर जाए वहां हरे भरे खेत खलिहान हैं और उनमें कहीं कहीं आपको बकरी और गायें भी दिख जाती हैं। बस थोड़ी ही दूर पर आपकी नजर अटक जाएगी कुछ पीले रंग के झंडों पर, जो हवा में लहराते हुए आपका ध्यान खुद ही अपनी ओर खींच लेते हैं। ये झंडे भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद अस्थायी सीमा को दर्शाते हैं। मुहरी चार यानी मुहरी नदी की तराई वाले करीब 700 एकड़ के इस भूखंड की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति ही कुछ ऐसी है कि भारत बांग्लादेश के बीच समझौता होने के बावजूद इस जगह पर आकर भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लकीर ठीक से नहीं खींची जा सकी। यहां राजनीति और भूगोल आपस में घुल मिल गए हैं। त्रिपुरा विश्वविद्यालय में अध्यापक सप्तश्री मित्र कहते हैं,
नदीर माझ बराबर एक लाइन ধরে নেওয়া হয়েছে যে সেটাই হলো হচ্ছে ডিমার্কেশন লাইন বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে। সেখানে নদী একটা প্রাকৃতিক,
ये मान लिया गया है कि नदी के बीचों बीच की लकीर ही दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा है, लेकिन यहाँ नदी एक भूखंड को घेर कर बहती है। मामला ये है कि जिस इलाके को हम मुहूरी कहते हैं वो इलाका वहाँ है जहाँ नदी मुड़ती है। वक्त और मौसम के साथ साथ पानी की गति और नदी का रास्ता भी बदलता रहता है, यानी कि वो खिसकती रहती है। जैसे जैसे नदी रास्ता बदलती है उसके किनारे भी बदलते रहते हैं। यही समस्या की जड़ है, क्योंकि एक तरफ जहां नदी जमीन काटकर बढ़ रही है, दूसरी तरफ से वो सिकुड़ रही है, यानी अपने किनारे से खिसक रही है।
একদিকে জমি ভাঙছে আর একদিকে জমি তৈরি হচ্ছে।
मुहूरी नदी की तराई पर विवाद आज तक क्यों खत्म नहीं किया जा रहा है? सीमा के नजदीक मुहूरी चार घेसा में रहने वाले वृद्ध नारायण चंद्र मजूमदार यही सवाल पूछते हैं।
अवस्था बोलते
सभी कह रहे हैं कि इस मामले में कोई फैसला लिया जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। चार का इलाका ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है। हम भारतीय हिस्से में रहते हैं, इसका समाधान अब हो जाना चाहिए। सीमा को लेकर यहां ऐसा कोई विवाद नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मामला निपटा लिया जाए। मुहूरी नदी की तराई को लेकर सोम प्रकाश थर ने लंबे वक्त तक अध्ययन किया है। वो बताते हैं कि बेलोनिया में मुहूरी नदी का जो मोड़ है वहां नदी मोड़ पर लगातार बांग्लादेश की तरफ बढ़ रही है, जिस कारण तराई वाला इलाका अब भारत की तरफ खिसकने लगा है। ये जमीन बेहद उर्वर है और इस कारण दोनों ही देश इस पर अपना अधिकार छोड़ने के लिए राजी नहीं। सोम प्रकाश धर बताते हैं,
অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইন দি ইয়ার 1937 যে সেটেলমেন্ট সার্ভেটা হয়েছিল তখন যে অবস্থাটা ছিল তার পরবর্তী সময়ে ডিপোজিশন সিল্টের পরিমাণ অনেক বাড়তে থাকে।
সাল 1937 কে আসপাস ইয়াহা সেটেলমেন্ট সার্ভে কিয়া গয়া থা, উস সময় জো স্থিতি থি ও আব নহি হ্যায়। नदी में तलछट जमने के कारण लगातार नदी बांग्लादेश की तरफ बढ़ रही है और उधर तराई का इलाका कम हो रहा है, जबकि भारत की तरफ ये इलाका लगातार बढ़ रहा है। नदी के बीचों बीच जो सीमा निश्चित की गई थी वह भारत की तरफ की तराई के इलाके तक पहुंच गई है। इस कारण भारत की तरफ जो अस्थायी जमीन तैयार हो गई है वो बेहद उपजाऊ है। और मुद्दे की बात यह है कि इस इलाके की जमीन की उर्वरता साल दर साल बढ़ती जा रही है।
मुहूरी की तराई वाले इलाके में सीमा विवाद न सुलझने की सूरत में यहाँ फिलहाल कांटे की तार लगा दी गई है, लेकिन जब तक दिल्ली और ढाका के बीच इस इलाके को लेकर कोई ठोस हल नहीं निकल जाता तब तक सीमा के नजदीक रहने वाले इन गांव वालों के लिए सीमा पर एक अदृश्य दीवार है जिसे लांघकर वो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में वोट देने पहुंचे और इसी तरह बीते 50 सालों से लगातार वोट देते आ रहे हैं।
बीबीसी संवाददाता शुभज्योति घोष की रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां कठुआ में 8 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में एक पुलिस अधिकारी पर आरोप लगा था। शनिवार को पुलिस अधिकारी के समर्थन में एक रैली निकाली गई जिसमें कई लोगों के हाथों में तिरंगा था और कथित तौर पर भाजपा के कई नेता भी इस रैली में शामिल थे। प्रदेश की मुख्यमंत्री ने इसे तिरंगे का अपमान कहा है। सुनिए माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
8 साल की आसपा बानों की हत्या और बलात्कार के मामले ने दो दिन पहले उस समय एक नया मोड़ लिया जब कुठवा इलाके में हिंदू एकता मोर्चा संगठन ने आसपा की हत्या और बलात्कार के आरोपियों के समर्थन में रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी पुलिस अफसर को रिहा करने का मुतालबा किया। रैली में शामिल लोग हाथों में राष्ट्रीय तिरंगा लहराते हुए नजर आए। इस रैली के बाद राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, इस बात से भी मुझे काफ़ी खौफ आया कि इस रैली के दौरान हमारे राष्ट्रीय तिरंगा का इस्तेमाल किया गया है, ये तो अपमान से कम नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी रैली के दौरान तिरंगा लहराने पर बताया कि ये तो राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान है। वहीं कश्मीर के अलगावादियों ने भी धमकी दी है कि अगर आसपा को इंसाफ नहीं मिलेगा तो पूरे राज्य में आंदोलन छेड़ा जाएगा। कुठवा इलाके के एक समाजी कार्यकर्ता तालिब हुसैन ने बीबीसी को बताया कि न सिर्फ रैली का आयोजन किया गया बल्कि अब तो वहां के गोजरों के साथ बहिष्कार भी किया जाने लगा है।
ये बच्ची का जो रेप और मर्डर हुआ ये हिंदू और मुसलमान का मसला बन गया हुआ है, तो इसमें जो बंदा हिंदुओं की सपोर्ट करेगा वो उनको लग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को कि जो उनकी सपोर्ट करेगा हिंदुओं की उसको वोट मिलेगा फ्यूचर में, जो मुसलमानों की सपोर्ट कर गया उनको वोट नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे हमारी आबादी के हिसाब से 1% से कम लोग हैं हमारे, 99% पॉपुलेशन जिसे एक तबके की और उस तबके को इस तरह से मोबिलाइज भी कर लिया जाए और फिर उसके बाद कांग्रेस ना बीच में कूदे, मतलब ये कोई नई बात नहीं है ना।
कुठवा में आयोजित रैली में बीजेपी के कई कार्यकर्ता और बीजेपी के एक विधायक भी देखे गए हैं। कुठवा में हिंदू एकता मोर्चा की रैली के आयोजन पर बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का कहना था कि उनकी पार्टी के विधायक इसलिए वहां गए थे क्योंकि वो उस इलाके के विधायक हैं।
वहाँ का जो MLA है कंसर्न, वो चूंकि लोग वहाँ के इरिटेटेड थे तो वो वहाँ गया था। बीजेपी ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट कंडेम्ड द इंसिडेंट। हम ये सरकार को कह रहे हैं कि भाई इसको CIB की इंक्वायरी कराओ, द कल्प्रिट शुड बी पनिश्ड, दे शुड बी कॉट एंड दे शुड बी पनिश्ड। बीजेपी का तो शुरू से ये है।
10 जनवरी 2018 को जम्मू के कुटवा इलाके में 8 साल की आसपा का अपहरण हुआ था और परिजनों ने अगले दिन पुलिस में आसपा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। 7 दिन के बाद आसपा की लाश कुटवा के एक गांव रसाना में मिली। आसपा की लाश मिलने के बाद परिजनों ने इलाके में विरोध प्रदर्शन किए और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी काफी शोर शराबा हुआ, जिसके बाद सरकार ने सदन में बताया कि इस मामले में एक 15 साल के किशोर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 15 साल के किशोर की गिरफ्तारी पर मामला ठंडा नहीं हुआ और इलाके के SHO को निलंबित किया गया और मामले की जांच क्राइम ब्रांच के सुपुर्द की गई। क्राइम ब्रांच की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम या SIT ने बहुत जल्द घटना की एक अहम कड़ी को जोड़ते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर या SPO 28 वर्ष के दीपक खजूरिया को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत मिलने का दावा किया। क्राइम ब्रांच के एडिशनल DG आलोक पुरी ने मीडिया को बताया कि आसपा की हत्या से पहले उनका बलात्कार भी हुआ था। 3 दिन पहले क्राइम ब्रांच ने एक और आरोपी को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, जो आरोपी पुलिस विभाग से है। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में रोष और गुस्से की लहर फैल गई थी। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। मोहम्मद शाहिद, काफी देर से अखबारों को उलट पलट रहे हैं, क्या मिला आज खास अखबारों में?
आदर्श, सब अखबारों में मिली जुली खबरें हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि हर अखबार में एक खबर हो, लेकिन एक त्रिपुरा विधानसभा का कल मतदान हुआ उसकी खबर लगभग हर अखबार के पहले पन्ने पर नहीं कह सकते, लेकिन कहीं कहीं है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है 78% वोट त्रिपुरा में, और जैसा कि PNB घोटाला की खबरें रोज़ नई नई आती रहती हैं कुछ ना कुछ, उसी के मद्देनज़र टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर अपनी लीड छापी है कि केंद्र सरकार ने पिछले 11 सालों में जो पुनर्पूंजीकरण के लिए पैसा डाला जाता है उसने सरकारी बैंकों में केंद्र सरकार ने 2.6 लाख करोड़ रुपए डाले हैं, तो ये खबर है। PNB घोटाले में हिंदुस्तान छापता है, PNB घोटाले में 47 स्थानों पर छापे। और इसके अलावा दैनिक भास्कर अपनी कहीं से जांच करके रिपोर्ट लाया और पहले पन्ने पर अपनी लीड देता है कि नीरव के पास थे PNB के पासवर्ड, बैंक की ओर से दे देते थे लोन गारंटी, तो इन्होंने इसको हेडिंग बनाया है
जी।
इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प खबर आपको कुछ अखबारों में दिखेगी, दैनिक भास्कर में भी और ये अमर उजाला में भी दिख रही है हम लोगों को, कि PM की उड़ानों के नेविगेशन पर पाक ने जो है
2.86 लाख रुपए का नेविगेशन शुल्क वसूला है, मतलब वो एक डिमांड रखी है।
जो प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं हवाई जहाज में वहां उड़ते हुए, तो उनका मानना है कि नेविगेशन का जो चार्ज है उन्होंने लिया है पाकिस्तान ने। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर एक खबर है कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पर जो चर्चा हुई थी उस दौरान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक दलित छात्रों को कथित तौर पर अलग बिठाया गया और घोड़ों के लिए जो इस्तेमाल होती है जगह
जी
वहाँ बिठाया गया, तो उन्होंने शिकायत की है छात्रों ने, उनका कहना है कि उनके साथ मिड डे मील के दौरान भी भेदभाव होता है। इसी अखबार के पहले पन्ने पर खबर है सूत्रों के हवाले से कि जो अभी सपा सांसद राज्यसभा में हैं जया बच्चन, जो अभिनेत्री भी रही हैं, उनको TMC राज्यसभा के लिए दोबारा भेज सकती है। और इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो भी आए हुए हैं अभी इंडिया लगभग हफ्ते भर के दौरे पर, लेकिन उनकी लेकर खबरें बड़ी सूखी सी हैं, कहीं अखबारों में दिख नहीं रहा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी प्यारी सी एक तस्वीर छापी है पहले पन्ने पर जिसमें जस्टिन ट्रूडो अपने छोटे बेटे को हवा में उछाल रहे हैं। कल वो आगरा गए थे ताजमहल देखने के लिए, तो ये खबर है
जी। बस चलते चलते एक नज़र मेरी पड़ी है भेड़ के शरीर में उगेंगे इंसानी अंग, अमर उजाला में, और स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी ने पहला मानव भेड़ हाइब्रिड तैयार किया है और प्रत्यारोपण के लिए जिससे यह दावा किया गया है कि दिल, लीवर और किडनी जैसे अंग भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पीटीआई के प्रमुख इमरान खान ने बुशरा मानिका से शादी कर ली है और इस बार पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी इसी पर है, सुनिए।
इमरान खान को तीसरी शादी की बधाई देना इसलिए भी बनता है कि निकाह में दुल्हन के घर वाले तो शरीक हुए पर दूल्हा की ओर से खानदान वालों की बजाय सिर्फ इक्का दुक्का दोस्त या राजनीति के साथी ही मौजूद थे। हमारी दुआ है कि इस बार ये विवाह लंबे समय तक चले, क्योंकि खान साहब की निजी ज़िंदगी शांत होगी तो उनकी पार्टी और फिर देश की राजनीति में भी थोड़ा बहुत सुकून महसूस होगा। अगर खान साहब का जी बाहर से ज़्यादा घर में अटक गया तो इसका तुरंत फ़ायदा ये होगा कि हर छोटे बड़े मुद्दे पे तीवरी पहले से कम चढ़ेगी और भाषण, रोज़ रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसों, जलसों और ट्विटराना आरोपों और अपनी सफाइयों में भी उतार आएगा। वैसे भी नई नवेली बीवियों के लिए मोबाइल फ़ोन किसी सौकन से कम नहीं होता। चूँकि नई भाभी ज्योतिष, तावीज़, दम दरूद भी जानती हैं और इमरान खान की उनसे पहली मुलाकात भी 3 बरस पहले तावीज़ और दुआ लेने के लिए ही हुई थी, इसलिए अगर खान साहब ने भाभी के साथ किचन में हाथ बटाना शुरू कर दिया या तीखा सालन पकाने और सिलाई कढ़ाई पे लगा दिए गए तो कोई ये भी नहीं कह सकेगा कि खान साहब जन मुरीद हो गए, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी को पहले ही से संत और पीर मानते हैं। इमरान खान आध्यात्मिक बुशरा बीवी से 2015 में उस वक्त प्रभावित हुए जब बुशरा बीवी ने इमरान खान के अमित शाह यानी जहांगीर तरीन की लोधरा के हलके से उपचुनाव में विजेता होने की भविष्यवाणी की थी, मगर 2 वर्ष बाद ही उच्च न्यायालय ने इन्हीं जहांगीर तरीन को झूठा और बेईमान करार दे के सीट वापस ले ली और 5 वर्ष के लिए नेतागिरी करने पर भी रोक लगा दी। लगता है कि इसके बाद इमरान खान खुद पीर बन गए, तभी तो उन्होंने जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को पिता की खाली सीट पे टिकट दे दिया और अली इस सीट को नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग से छिनवा बैठे। इमरान खान ने तीसरी शादी बहुत आस उम्मीदों के साथ की है। देखना ये है कि मुरीद और पीरनी का ये खूबसूरत बंधन 4-5 महीने बाद होने वाले आम चुनाव में इमरान खान की पीटीआई के लिए आसमानों से अच्छी खबर लाता है या फिर खान साहब के घर से ये आवाज़ आती है कि जोर का झटका हाय जोरों से लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सज़ा। तब तक और इसके बाद के लिए भी खान साहब और बुशरा बीबी को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं।
ये डायरी आपको कैसी लगी लिखिएगा जरूर। और अब समय है साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत ने कल जोहानिसबर्ग में खेले गए पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 28 रन से मात दी। दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 204 रनों का लक्ष्य था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदबाजी के कारण दक्षिण अफ्रीका निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 175 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका के रीजा हेंड्रिक्स ने 70 और फरहान बेहारदीन ने 39 रन बनाए। भुवनेश्वर कुमार ने 24 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर भारत ने शिखर धवन के धुआंधार 72 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 203 रन बनाए। उधर दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम ने कल जोहानिसबर्ग में खेले गए तीसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम को 5 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीकी टीम के सामने जीत के लिए 134 रनों का लक्ष्य था, जो उसने कप्तान डैन फैन निकर्क के 26, सुने लूज के 41 और कप्तान क्लोएट्रॉन के नाबाद 34 रनों की मदद से 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर भारतीय महिला टीम दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल की तेज गेंदों का सामना नहीं कर सकी और पूरी टीम 17.5 ओवर में ही 133 रन पर सिमट सिमट गई। शबनीम इस्माइल ने 30 रन देकर 5 और मसाबाता क्लास ने 20 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 48 और स्मृति मंधाना ने 37 रन बनाए। हालांकि एक समय भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट खोकर 93 रन था, जिसका मलाल कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी रहा कि उसका फायदा टीम नहीं उठा सकी और मध्यम क्रम बिखर गया। उन्होंने कहा कि टीम पूरे 20 ओवर खेलती तो अच्छा टोटल बोर्ड पर होता।
आई थिंक आवर लोअर ओवर कोलैप्स्ड एंड आफ्टर गेटिंग अ गुड स्टार्ट वी शुड हैव यूटिलाइज्ड दैट मोमेंटम। आई थिंक वी लैक इन बैटिंग। इफ वी कुड हैव प्लेड फुल 20 ओवर वी कुड हैव एबल टू सेट अ गुड टोटल ऑन द बोर्ड।
कल का मैच हारने के बावजूद भारतीय महिला टीम 5 मैचों के सीरीज में 2-1 से आगे है। और अब समीक्षा। भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका में मिली पहली एक दिवसीय सीरीज की जीत की। आखिरकार विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट सीरीज 2-1 से गंवाने के बाद एक दिवसीय सीरीज 5-1 के बड़े अंतर से जीती। दक्षिण अफ्रीका को उसी की जमीन पर मात देने के बाद विराट कोहली ने स्वीकार किया कि अब जाकर बदला है टीम का माहौल।
The mood is great in the change room. Guys are very relaxed. They're looking forward to doing anything, bat or bowl or field. So we've done well to stand where we are.
टीम आज जहां है उसमें सबका योगदान, लेकिन खुद कप्तान विराट कोहली का सबसे ज्यादा। उन्होंने 3 शतक की मदद से 558 रन बनाए। शिखर धवन ने भी 2 अर्धशतक और 1 शतक जमाया तो रोहित शर्मा भी खराब फॉर्म के बीच एक शतकीय पारी खेल गए। लेकिन तुरुप के इक्के साबित हुए स्पिनर युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव। इनकी बात करते हुए क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कप्तान विराट कोहली को ही केंद्र में रखते हैं।
8 महीने पहले अगर आप देखें रविचंद्रन अश्विन और जडेजा हमारे मेन स्पिनर थे, अब रिस्ट स्पिनर आ गए हैं, उनको लाने में विराट कोहली का खुद का बड़ा हाथ है। तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा शेयर देनी चाहिए विराट कोहली को एज ए बैट्समैन एंड एज ए कैप्टन, और बाकी प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। शिखर धवन का, रोहित शर्मा ने एक सेंचुरी लगाई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें तो विराट कोहली जो है बिल्कुल एक तरह से जैसे नॉर्थ स्टार होता है गैलेक्सी में, वहां पर छाए हुए हैं, चमक रहे हैं।
एक दिवसीय सीरीज में युजवेंद्र चहल ने 14 और कुलदीप यादव ने 16 विकेट झटके। कुलदीप यादव अपने जोड़ीदार चहल को लेकर कहते हैं,
अगर वो पहले बॉल डालता है तो हम बात करते हैं कि कैसा विकेट है, कैसा चल रहा, टर्न हो रहा बॉल या फिर नहीं हो रहा, सीधा हो रहा, ड्रिफ्ट हो रहा, किधर विंड। तो हमारे चहल में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, उसकी वजह से बहुत ईजी हो जाता है बॉल डालना।
लगातार 9वीं एक दिवसीय सीरीज जीतकर भारत ने दिखा दिया कि अगले साल होने वाले विश्व कप की तरह भारतीय क्रिकेट टीम सही कदमों के साथ बढ़ रही है। उधर क्रिकेट के बोलबाले के बीच स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने रोटरडम ओपन अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-2 से हराया। बीते शुक्रवार को ही रोजर फेडरर ने सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही 36 साल की उम्र में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बनने की उपलब्धि भी हासिल की थी। इसे कहते हैं पुराने चावल की शानदार और जानदार महक। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और अब विदा लेने से पहले सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में फ्लोरिडा के एक स्कूल में हुई गोलीबारी के बाद छात्रों ने बंदूक नियंत्रण पर राजनीतिक कार्रवाई के लिए अगले महीने वाशिंगटन में एक राष्ट्रीय रैली की योजना बनाई है। ईरान के पर्वतीय क्षेत्र में 66 लोगों के साथ गायब हुए विमान के बचाव अभियान में भारी बर्फबारी के बाद रुकावट आई है। सरकारी टीवी चैनल का कहना है कि अगर स्थिति ठीक हुई तो सोमवार को फिर से अभियान शुरू होगा। इस्लामिक स्टेट समूह ने कहा है कि रूसी गणराज्य दागिस्तान में एक चर्च में 5 लोगों की हत्या के पीछे उसका हाथ है। चरमपंथी समूहों के खिलाफ इसराइली हमले में मारे गए 2 फलस्तीनी किशोरों को आज दफना दिया गया। शनिवार को एक धमाके में इसराइली जवानों के घायल होने के बाद ये कार्रवाई की गई थी। उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों ने कहा है कि उन्होंने सीरियाई सरकार से एक सौदा किया है जिसके तहत वो तुर्की आक्रमण को पीछे धकेलने के लिए सेना भेजेगी। दक्षिण अफ्रीका के पुलिस मंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार मामले से जुड़े 5 लोगों की खोज का दायरा भारत, चीन और दुबई तक बढ़ा दिया गया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे मोहम्मद शाहिद। बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया अभिमन्यु साहा ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।